संबंध पीछे के दो श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। व्याख्या सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, माने क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना ये संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता। वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर कुटुंब वस्तु पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है। और जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है तथा पति के घर पर ही रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र जाति नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय निशोक निश्चिंत निस्संग हो जाता है। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, कारण कि इसी अध्याय के 41वें से 44वें तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं और फिर 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द आया है। उसके बाद 47वें श्लोक के ही उत्तरार्ध में तथा 48वें श्लोक में कर्म शब्द आया है। तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है, प्रत्युत करिष्ये वचनम तव 18:73 में कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया, प्रत्युत अपने क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः उपर्युक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है कि यज्ञ दान तप और अपने अपने वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको अवश्य करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। गीता का पूरा अध्ययन करने से मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ मानते थे। श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपीह लोके, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु भगवान ने इसका निषेध किया और दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें श्लोक तक इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार ये करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। तो गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, ये दोनों बात सिद्ध हो जाती है। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते, नौका 21। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत ही नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था, इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं ये चक्का निकाल न लूं तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूं और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूं। ऐसे समय रथी को उचित है कि वह उस पर बाण न छोड़े। तुम सहस्रार्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मुझ पर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आत्ताई को किसी तरह मार देना धर्म ही है, पाप नहीं है। और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला, अतः धर्म की दुआई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आई है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुआई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते, अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय कर भी दिया। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है। न चैतद विद्वह कतरन्नो गरीयो, दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है, इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। पहले अध्याय के 40वें से 44वें श्लोक तक विस्तार से कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन भी नहीं है। अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है। तू धर्म के निर्णय का भार मुझ पर छोड़ दे, यही सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। माम एकम शरणम ब्रज, इन पदों से एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि माम माने भगवान तो एक ही है ही, अनेक है ही नहीं। इसलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने तद एकम वद निश्चित्य, तीसरे अध्याय का 2वां, यत् श्रेया एतयोर एकम, 5वें अध्याय का 1, इन पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्मियों के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है, उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से ये बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय शरणागति है, सातवें अध्याय का चौदहवां श्लोक। अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ, आठवें अध्याय का चौदहवां श्लोक। परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है, आठवें अध्याय का बाईसवां श्लोक। अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, नवें अध्याय का बाईसवां श्लोक। अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है, ग्यारहवें अध्याय का चौवनवां श्लोक। अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ, बारहवें अध्याय का छठा सातवां श्लोक। गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति है, चौदहवें अध्याय का छब्बीसवां श्लोक। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं, माम एकम शरणम ब्रज। तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। माम एकम शरणम ब्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि भी उसी में ही आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः है। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बात कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु यह मान्यता युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गए हैं, तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं और उनके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है? उनके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं है। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरी अनन्य शरण हो गए हो तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा? यह कमी मेरी कमी है, अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम है। तुम्हारा तो बस एक ही काम है और वो काम है निर्भय होना, निशंक होना, निशोक होना, निश्चिंत होना और मेरे चरणों में पड़े रहना। परंतु अगर तुझ में भय, चिंता, बहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तुझ पर आ जाएगा। शरणागत होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। जैसे विभीषण भगवान श्री राम के चरणों की शरण हो जाते हैं, तो फिर विभीषण के दोषों को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए, वहां विप्रघोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहां के ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। भगवान श्री राम को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने श्री राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इस विभीषण ने यहां ब्रह्म हत्या कर दी है, इसको हमने बहुत मारा पर वो मरा नहीं। भगवान श्री राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वो कैसे मारा जा सकता है और उसको मारने की जरूरत ही क्या है, वह तो मेरा भक्त है, भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूं। दास के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। अतः विभीषण के बदले में आप लोग मुझे दंड दें। भगवान की शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। यह बात पद्म पुराण के पाताल खंड में आई है। वरम ममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम राज्यम मायूर मया दत्तम तथैव स भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते राम वाक्यम द्विजा श्रुत्वा विस्मयादिदम अब्रुवन। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस अपनेपन के समान योग्यता पात्रता अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है, यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, जब वह रात में रोता है तो सारे घरवाले उठ जाते हैं और उसे राजी करने में लग जाते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही दृष्टि रखनी चाहिए। मां सुचय का तात्पर्य है, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध है और तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता है तो दुख होना तो इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आ जाता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से दांतों से पकड़ती है और भगवान को पुकारती भी है। अपने बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देरी लगती है, परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान पर ही निर्भर हो जाती है तब दुशासन चीर को खींच खींच कर थक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है पर द्रौपदी का कोई भी अंग उघड़ता नहीं है। ये अभिमान रहित शरणागति हुई। मेरा भक्त होकर तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी बता, लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान उसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी, और कलंक आता है मुझ पर, मेरी शरणागति पर, तू इसको छोड़ दे। दूसरी बात, तेरे भाव वृत्तियां आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा। तीसरी बात है, दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोक में कहते हैं, इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर भी, अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी, इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, ये तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। चौथा, शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक सदगति दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, दिवि वा भूवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरिति शारदा रविंदौ चरणौ ते मरने पी चिंतयामि। हे नरकासुरकांत करने वाले प्रभु, आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें, चाहे यथेच्छ नरक में रखें, आप जहां रखना चाहे वहां रखें, जो कुछ करना चाहे वो करें, इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो मांग बस एक यही है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं ही नहीं। शरणागति संबंधी विशेष बात, शरणागत भक्त, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय शोक चिंता शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, दोषों का आधार ही मिट जाता है। कारण कि भक्त की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुक्ता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सन्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय शोक चिंता शंका परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार किया जाता है। पहला, निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप बिच्छू बाघ आदि से बाहर का भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी हो जाता है, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, इस भय का भाव भी साधक के भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूं, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है, ममता मल जरी जाए। अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं तो मुझे भय किस प्रकार का। अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है, भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कई ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से द्वैत भाव हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्ति दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है, द्वितीयाद्वै भयम् भवति। परंतु यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है पर आत्मीय से भय नहीं होता। भय सदा दूसरे से होता है, अपने से होता ही नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, शरीर संसार, ये द्वितीय है, इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकारी, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय है, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। अतः भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है। प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है, पर माँ की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। दूसरा, निशोक होना। जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वो अवश्यम भावी था और जो नहीं होने वाला है वो कभी हो ही नहीं सकता, और अभी जो हो रहा है वो ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है, फिर उसमें शोक करने की बात क्या है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। तीसरा, निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी, आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। क्यों? चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरणों में कहाँ आई, वो तो नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है ये गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया, जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया, तो फिर मेरा मन मेरी बुद्धि आदि मेरे कैसे रहेंगे। इसलिए शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाए तो आर्त स्वर से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ बचाओ 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 ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया कि मां सूचे तू चिंता मत कर। अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जा और भगवान से कह दे हे नाथ ये सब आपके हाथ की बात है, अब आप जानो। सर्वसमर्थ प्रभु की शरण भी हो जाए और चिंता भी करे, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इसलिए शरणागत को ऐसा ही सोचना चाहिए कि जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूँ। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आवे ही नहीं। हे नाथ, शरीर इंद्रियां, प्राण मन बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मुझे आप ही छुड़ाएंगे, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाए। चौथा, निशंक होना। भगवान के संबंध में कभी ये संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या न हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं किया, प्रत्युत इस बात को देखे कि मैं तो अनादि काल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग माने विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं तो भी अलग कैसे हो सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंश है। इस प्रकार मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं संदेह मिट जाते हैं, शंकाओं संदेहों के लिए किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। परीक्षा न करना, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूं तो मुझ में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए, यदि ऐसे ऐसे लक्षण मुझ में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहां हुआ। प्रत्युत अद्वेष्टा 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे कि अरे मुझ में ये कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही ये कमी नहीं रहेगी, मिट जाएगी, कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने अब कम नहीं है। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण है वे सब बिना प्रयत्न किए आ जाते हैं। छठा, विपरीत धारणा न करना। भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूं, क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा तो परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, ये मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें भय शोक चिंता आदि दोष नहीं रहते, उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वह संबंध यहां तक दृढ़ होता है कि जब वह कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसको स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहां की नहीं हूं। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहीं की हूं और ये सब मेरे ही है। जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आई, मैं भी तो पराई जाई हूं, पराए घर में जन्मी हूं। जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव आचरण आदि की किंचन मात्र भी कमी रह जाए, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके इस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय 42वां श्लोक। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं देखते। रहति न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सयबारहिए की। भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का ही तो है, दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए भगवान की दृष्टि सदा इस वास्तविकता पर ही जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है तब माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ जाती है, बच्चे के मेले की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी मेले की तरफ नहीं जाती, माँ साफ करे या न करे, पर बच्चे की दृष्टि में तो मेला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही माँ है। द्रौपदी के मन में कितना द्वेष क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी। परंतु वही द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है भगवान तत्काल आ जाते हैं, क्योंकि द्रौपदी का भगवान के साथ गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते। परंतु मैं भगवान का हूं इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा ही निसंकोच होकर करे। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान की मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे, भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य न माने प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करे तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, संतोष करते हैं, तो ये शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचित मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काकभुसुंड जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमस ऋषि ने साप देकर उन्हें पक्षियों के बीच चंडाल पक्षी कौवा बना दिया, परंतु काकभुसुंड जी के मन में न कुछ भय हुआ न कुछ दीनता आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान समझा, केवल समझा ही नहीं प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा भयंकर साप मिलने पर भी जब काकभुसुंड जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तब लोमस ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बाल रूप में श्री राम का ध्यान बताया, फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काकभुसुंड जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाद अखंड राम भक्ति रहेगी, तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे, तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे, जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे, जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें एक योजन पर्यंत माया का कंटक किंचन मात्र भी नहीं आएगा, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी हुई, हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा है वो सच होगा, यह मनवाणी कर्म से मेरा भक्त है। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काकभुसुंड जी ने कहा है, भगति पच्छ हट कर रहूं दीनि महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखो भजन प्रताप। या भजन प्रताप शब्द का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वो सदा ही अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और इस जीव को भी प्रभु वस्तुतः प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से ही साक्षात भगवान का ही अंश है। इसलिए संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीन बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। गीता चौथा अध्याय आठवां श्लोक, इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्त की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। इसमें भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितेशिता, सुहृदता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहां भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, मद भक्तो भाव, मन मना भाव, मद याजी भाव, माम नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सन्मुख करने में है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाए, क्योंकि दुख संताप, बार बार जमना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं, वह संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा? जीव के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है, इसलिए भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम हृदय वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं। कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, और उन्हें ये स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं, उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग आदि आदि जितने भी साधन हैं, वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले संत महापुरुषों के द्वारा ही तो प्रकट किए गए हैं। अतः इन सब साधनों में भगवान की कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई आदि आदि। इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से चिपका रहता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। भगवान दर्शन दे या न दे, प्रेम दे या न दे, वृत्तियों को ठीक करे या न करे, हमें शुद्ध बनाए या न बनाए, ये सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपने माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जा रखे, चाहे जाए ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेट कर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुमार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी नहीं कहते कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटका बनाओ, कुम्हार चाहे जो बनाए, अतः उसी की मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी मन की बात नहीं रखता, वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है, और वह जितनी चिंता करता है अपना बल मानता है उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण विचित्र अटूट कृपा का प्रवाह आता है, अपनी चिंता करने से उस कृपा प्रवाह में बाधा लगा देता है। जैसे धीवर माने मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती है, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास रहती है वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया माने संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं, परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते 7:14। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों को जाल में फंसाने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचन मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है, तभी तो वे कहते हैं मामेकम शरणम ब्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं, परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कील के आसपास रहने वाले दाने ज्यों के त्यों साबुत रहते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूपी संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सब के सब जीव पिस जाते हैं, दुख पाते हैं, परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, परंतु यह दृष्टांत भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कील के पास रह जाते हैं, वे बचने का कोई उपाय नहीं करते हैं, परंतु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है वही जन्म मरण रूप चक्र में पड़कर दुख भोगता है। संसार और भगवान इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्यों को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का भी मालिक। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है यही वास्तव में पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या बुद्धि धन संपत्ति त्याग वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है तो वह उस विद्या आदि के पराधीनता दासता ही है। जैसे कोई धन को लेकर अपने में विशेषता मानता है तो वह विशेषता वास्तव में धन की ही हुई, खुद की नहीं हुई। वह अपने को धन का मालिक मानता है पर वास्तव में वह धन का गुलाम है। संसार का एक कायदा है कि सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने में कुछ विशेषता मानता है उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद दलित कर देते हैं। परंतु जो भगवान के आश्रित होकर सदा भगवान पर ही निर्भर रहता है, उसको अपनी कुछ विशेषता दिखती नहीं, प्रत्युत भगवान की ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दिखती है। भगवान चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना ले और चाहे अपना मालिक बना ले, तो अभी उसको अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती। प्रभु का ये कायदा है कि वह जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर जाती है। किसी किसी में यहां तक विलक्षणता उतर जाती है कि उसके शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं, उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान के कई प्रेमी भक्त भगवान में ही समा गए, अंत में उनके शरीर नहीं मिले। जैसे मीराबाई शरीर सहित भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गई, केवल पहचान के लिए उनकी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा छोर श्री विग्रह के मुख में रह गया और कुछ नहीं बचा। ऐसे ही संत तुकाराम जी शरीर सहित बैकुंठ चले गए। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके असत से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु जब भक्त भगवान के सन्मुख होता है, तब उसके शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण आदि सभी भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर ही है, चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदि में भी उतर आती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, लोगों की दृष्टि में तो उनके शरीर में जड़ता दिखती है, पर वास्तव में उनके शरीर चिन्मय ही हो जाते हैं। भगवान के सर्वथा शरण हो जाने पर शरणागत के लिए भगवान की कृपा तो विशेषता से प्रकट होती ही है, पर मात्र संसार का स्नेह पूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मी का प्रभु शरणागत पर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। लौकिक व्यवहार में भी देखने में आता है कि पतिव्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है। दूसरी बात, प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठकर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठकर आती है, जिस गरुड़ के पंखों से सामवेद के मंत्रों का गान होता रहता है। परंतु कोई भगवान को न चाहकर केवल माता लक्ष्मी को ही चाहता है, तो उसके स्नेह के कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती है, पर उनका वाहन दीवांद उल्लू होता है। ऐसे वाहन वाली लक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य भी मदांध हो जाता है। अगर उस माँ को कोई भोग्या समझ लेता है, तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है, क्योंकि वह तो अपनी माँ को ही कुदृष्टि से देखता है, इसलिए ये महान अधम है। तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी भगवान के साथ ही आ जाती है, पर जहाँ केवल लक्ष्मी की चाहना है, वहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान आ भी जाए, ये नियम नहीं है। शरणागति के विषय में एक कथा आती है। सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपले निकल रही थी और कहीं पर ताम्र वर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी, उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले, देखो हनुमान, ये लता कितनी सुंदर है, वृक्ष के चारों ओर कैसी छाई हुई है। यह लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी भरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा ही हो रही है। इस लता के कारण पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है ये लता। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी हनुमान जी से बोली, देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल किया कि नहीं, देखो इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के ही तो आश्रित हैं, वृक्ष के ही कारण है। इस लता की शोभा भी वृक्ष के ही कारण है। इसलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की है, आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है, कैसे छा सकती है। अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा तो वृक्ष की हुई ना। राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, ये महिमा तो लता की हुई ना। हनुमान जी बोले, हमें तो तीसरी बात सूझती है। सीता जी ने कहा, क्या तुम्हें क्या सूझता है बेटा। हनुमान जी ने कहा, माँ, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में रहना अच्छा लगता है, अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है। सेवक सुतपति मात भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आलादनी शक्ति दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल उनकी आलादनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। शरणागत भक्त के लिए तो प्रभु और उनकी आलादनी शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है। एक बार एक प्रज्ञा चक्षु संत हाथ में लाठी पकड़े हुए यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी, उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा, तो बाबा जी भी पानी में गिर पड़े। हाथ से लाठी छूट गई थी, दिखता था नहीं, अब तैरे तो कैसे तैरे। भगवान की शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया, तो उन बाबा जी को ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़कर किनारे पर डाल दिया है। वहां दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सारे वे चल पड़े। तात्पर्य यह है कि भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है, उसको अपने लिए कुछ करना नहीं बनता, भगवान के विधान से जो हो जाए उसमें वह प्रसन्न रहता है। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गई, उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता में से निकलने में बहुत देर लगी, तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गईं। अंधेरा भी हो रहा था, वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वह किनारे की गीली जमीन पर एक सिंह का चरण चिन्ह अंकित था। वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िये, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए पास में आए, तो उस बकरी ने बता दिया कि पहले देख लेना कि मैं किसकी शरण में हूँ, तब मुझे खाना। उन्होंने चिन्ह को देखा और कहने लगे, अरे ये तो सिंह का चरण चिन्ह है, ये बकरी इस सिंह के चरण चिन्ह के शरण है, जल्दी भगो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है। बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देख लेना फिर बात करना। जिसका ये चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण हुए बैठी हूँ। सिंह ने देखा, ओहो ये तो मेरा ही चरण चिन्ह है, यह बकरी तो मेरे ही शरण हुई है। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले, इसको जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो जानता है कि मैं कौन हूँ, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी के पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों की ऊपर की कोंपले खाया करती और मस्त रहती। खोज पकड़ सैंठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोंपल खाए। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो जाको शरणो गहे ताके ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले बहु जात गजराज। भगवान के साथ काम भय द्वेष क्रोध स्नेह आदि से भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। श्रीमद् भागवत में सातवें स्कंद में पहले अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्ति ईश्वरी मन आवेश्य तदगम हित्वा बहवस तद गतिं गता। तात्पर्य यह हुआ कि काम भय द्वेष आदि किसी तरह से भी जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन रहे, वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। उन भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उन पर लागू नहीं होते जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए हैं। पुष्टवे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादय न कारणम मत भजन्ते भक्तिरेव ही कारणम। इसका कारण यह है कि वे अच्युत के ही हैं, यतस्तदीया संसार के नहीं। अच्युत भगवान के होने से वे अच्युत गोत्र के ही कहलाते हैं। शरणागति का रहस्य, शरणागति का रहस्य क्या है इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं, फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती है। क्योंकि हरेक आदमी जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। पाठकों से प्रार्थना है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ न निकालें, क्योंकि प्राय लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं। इसलिए ऐसी बातों को कहने सुनने के पात्र भी बहुत कम होते हैं। भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में दो बातें बताई। पहली, माम एकम शरणम व्रज 18:66, अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा। और दूसरी बात, सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत 15:19, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्व भाव से मेरा भजन करता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत 18:62, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा। हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें और सर्व भाव से भगवान के शरण हो जाएं, साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा हैं, लीलाएं हैं, नाम हैं, धाम हैं। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं है। उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। अगर वह गुण प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण प्रभाव आदि के ही शरण हुआ है, भगवान की शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा ले। उल्टा अर्थ लगाना क्या है? भगवान के गुण प्रभाव नाम धाम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है। अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि सुननी है, न भगवान के धाम में जाना है। ये उल्टा अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है कि केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न है तो अच्छी बात, और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो अच्छी बात, वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात, और इतने निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान दुनिया में कोई कठोर है नहीं तो भी अच्छी बात, उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो अच्छी बात, और उनके कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। असुंदर सुंदर शेखर होवा गुणैर विहीनो गुणिनाम वरोवा द्वेषी मयी सात करुणाम बुधिर्वा श्यामस एवाद्य गतिर्ममायम। भगवान की इन बातों की परवाह न होने से, भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है, पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी। जहाँ गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान के शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण प्रभाव आदि के ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपए वाले आदमी का आदर करे, वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं रुपयों का है। किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए तो वह आदर उसका नहीं मिनिस्ट्री का है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है, उसका खुद का आदर नहीं। परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति का आदर करे तो इससे धनी का धन या मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली जाएगी, ये बात नहीं है, वह तो रहेगी। ऐसे ही केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे ऐसी बात तो है नहीं, परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, उनके गुणों आदि पर नहीं। सप्तर्षि होने जब पार्वती के सामने शिवजी के अनेक अवगुणों का और विष्णु के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए उनको शिवजी का त्याग करने के लिए कहा, तब पार्वती जी ने उनको यही उत्तर दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जहि कर मनोरम जाहि सना तेहि तेहि सन काम। ऐसी बात गोपियों ने भी उद्धव जी से कही थी। उद्धव मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर दे कपूर को तजी अंगार अघात मधुब करत घर कोरे काठ में बंदत कमल के पात जो पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात। भगवान के प्रभाववादी की तरफ देखने वाले को, उससे प्रेम करने वाले को मुक्ति ऐश्वर्य आदि तो मिल सकता है, पर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाला भगवत प्रेमी भक्ति ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध भी सकता है, उनकी बिक्री भी कर सकता है। भगवान देखते हैं कि वह मुझसे प्रेम करता है, मेरे प्रभाव की तरफ देखता तक नहीं, तो भगवान के मन में उसका बड़ा आदर होता है। प्रभाव की तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है, हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थों का आदर है। जब तक हमारे मन में कामना है, तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना न रहे तो भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी, तो हम भगवान के शरण हो जाएंगे, भगवान के अपने हो जाएंगे। पूतना राक्षसी ने जहर लगाकर स्तन मुख में दिया तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात त्रुचिताम तत्वन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले, वह मुक्ति पूतना को मिल गई। जो मुख में जहर देती है उसे तो भगवान ने मुक्ति दे दी। अब जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दे? तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए, उन्हें अपने आप को ही दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं, कारण कि मैया की भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि नहीं है। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को दे देते हैं। सर्वभाव से भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में है, मन शुद्ध निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में मान है, इस प्रकार हम भी कुछ हैं, ऐसा मानकर भगवान के शरण होना शरणागति नहीं है। भगवान के शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हम में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो जाए, पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं तो हम भगवान के शरण कैसे हुए, आदि आदि ये भाव आने नहीं चाहिए। ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी की है ही नहीं। जो अनन्य शरण हो जाता है वो देखता ही नहीं है कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, मन चंचल है कि स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है कि अनजानपना है, अपने में मूर्खता है कि विद्वत्ता है, योग्यता है कि अयोग्यता है, इत्यादि। इन सब की तरफ वह स्वप्न में भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीजें कूड़ा करकट है, उन्हें अपने साथ नहीं लेना है। यदि इन चीजों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान का शरणागत भक्त हूं, अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरण तो हो गया पर भक्तों के गुण जो 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक बताए हैं वो मेरे में तो नहीं आए। अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूल कर भी न देखें। इसका यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे बैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें, यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण होने वाले भक्त में ये सब के सब गुण अपने आप आ जाएंगे, पर इनके आने या न आने से उस भक्त को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि अपने में ये गुण या लक्षण है या नहीं। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं। तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं। प्राय लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, भगवान का भक्त हो गया तो फिर उसको बुखार क्यों आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी लगाना फालतू की बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोगों को क्या समझाएं? वे सत्संग के नजदीक ही नहीं आए, इसलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है। वे इन बातों को समझ नहीं सकते। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसार में अपनापन होता ही है, उसकी निंदा होती ही है। शरणागत भक्त को तो निंदा, प्रशंसा, रोग निरोग अवस्था आदि से कोई मतलब नहीं होता। इनकी तरफ वह देखता ही नहीं है। वह यही देखता है कि मैं हूं और भगवान है, बस। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी क्या है क्या नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, इन बातों की तरफ उनकी दृष्टि जाती नहीं है। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं उनके भक्त हैं क्या? तो उस संत ने उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं। यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं है। शरणागत भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ऋषिकेश गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? यह ठंडी हवा आई, यह गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया? भगवान ने भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया या दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहाँ है? इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है। एक कुलटा स्त्री थी, उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। मार्ग में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवार छोटी छोटी थी। दीवार के पास ही वहां का मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह उल्टा अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि देखो ये कैसी औरत है, इसने मुझ पर जूती सहित पैर रखकर मुझे नापाक बना दिया, माने अशुद्ध बना दिया। वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वह उल्टा पीछे दौड़कर आई तो मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअक्ल हो तुम, हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हम पर पैर रखकर चली गई। तब वह बोली, मैं नर राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भया, राचो नहीं रहमान। अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मुझे इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था, फिर तूने मुझे कैसे पहचान लिया कि यह वही थी। तू केवल कुरान पढ़ पढ़कर बावला हो गया। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता, कौन आया कैसे आया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था कि क्या था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया कौन नीचे गया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही नहीं क्यों गे जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे। जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ। कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीख कर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि इस चिड़िया के कंठ पर तीर मार कर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जी पहले सबसे अलग अलग पूछते थे कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता है कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वाले को वहां से हटाते गए। अंत में जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा गया कि वत्स अर्जुन तुमको क्या दिखता है। तो अर्जुन ने कहा मुझे तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ बेद दिया, क्योंकि उनके लक्ष्य पर दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सदा। अभी तो दृष्टि फैली हुई है, लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। इस प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है तब तक वह अनन्य कैसे हुआ। अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। मई चा अनन्य योगे न भक्तिरव्यभिचारिणी, गीता 13:10। अन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए, वहां तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो तो 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ओ हो, आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था, अब पता लगा कि वे 12 कला के अवतार हैं, इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, ये बात उन्होंने सुनी नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो रामलला हैं, वो हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा रामलला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने रामलला को, नंदलला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवान को ये बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती नहीं। या ब्रजरज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वा रज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं, वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार बुहार कर बाहर फेंक देती है। मैया के लिए वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ दृष्टि है, न तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ है और न योग्यता की तरफ है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से? और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है, वहां तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा भी नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ? इसलिए साथ में कोई साथी और सामान न हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक ब्रजवासी ग्वाला मिल गया। वह भगवान का बड़ा भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, ये फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य शक्ति गणेश ब्रह्मा आदि किसी को भी न माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। तो उसने उत्तर दिया, बाबा जी, हम तो इन सुसरों का नाम भी नहीं जानते कि वे क्या होते हैं क्या नहीं होते, हमें इनका पता ही नहीं है, तो हम फनन्य हो गए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। व्रज की एक बात है। एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि आदि। वह एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, ये ब्रह्म क्या होता है? तो उसने कहा, अरे हमारे लाला का कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानती नहीं सकी, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इसलिए ये सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं, कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो, कन्हैया तो भोला भाला है, वो क्या समझेगा और क्या करेगा, कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा, हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है, हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा। नगन मूरति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की, अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा। यशोदा मैया दाऊ जी से कहती है, देख दाऊ, ये कन्हैया बहुत भोला बाला है, तो इसका ख्याल रखा कर, कहीं ये जंगल में दूर न चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया ये कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब उसे कोई सांप काट ले तो। मैया कहती है, देख बेटा, अभी ये छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा, हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो छोटा सा कन्हैया, वो दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली, वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है। तो गोपियां कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है, कुछ नहीं है, कोई उससे मांगेगा तो वो देगा कहां से, इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास न जाए, कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो, विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ये भाव भी न आए। भगवान श्री राम जी से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहि कबउ कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निजगे। कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज सने, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। सो राउर निजगे, यदि चाहना भी साथ में रखे और भगवान को भी साथ में रखे तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट न हो, अर्थात कुछ भी चाहना न हो, जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा, वहाँ तो आसक्ति वासना और मोह ममता है। इसलिए गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं, माया तपंथा पति भीम रथ्याम दिगंबर है कोपि तमाल नील है विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूत समाकर सति चित्त वित्तम। हे पथिको, उस गली में मत जाना, वह बड़ी भयावनी है, वहां अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नील रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है, वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे, वह ऐसा चोर है कि वह सब खत्म कर देगा, उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना, अगर चले गए तो फिर सदा के लिए चले गए, इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाओ। उसका नाम कृष्ण है ना, कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, एक बार खींच ले तो फिर वह छोड़े ही नहीं, उससे पहचान न हो तभी तक ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बोरी बही डोले, रही न काहू काम की, जाई लगन लगी घनश्याम। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा और प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, ये हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो वो यही कहेंगे कि भाई ये धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता महान छटपटाहट होने लगती है। तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति नारद भक्ति सूत्र। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है, त्रिभुवन विभव हे तिवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरा दिवीर विमृग्ञात न चलती भगवत पदार विंदा लव निमेशार्धमपि यह सब ऐष्णवाग्र्य है। तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का जो आधे निमेश के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षति मद्विनान्यत्। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी महाराज कहते हैं, अरथन धर्म न काम रुचि गति न चाहू निरबान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानुन आन। परिशिष्ट भाव, भगवान के साथ कर्मयोगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है, और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है, तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता है, और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता है। नित्य संबंध में शांत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है, और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है, इसलिए शरणागति सर्व गुह्यतम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। तात्पर्य है कि किसी भी धर्म का आश्रय न हो, किसी भी कर्तव्य कर्म का आश्रय न हो। जैसे पहले अध्याय में आया है, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, वहां भी प्राणांस त्यक्त्वा का अर्थ प्राणों का त्याग न लेकर प्राणों के आश्रय का त्याग लिया जा सकता है, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा, असंभव बात है। इस तरह पहले अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत से अन्य शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं, तो वहां भी इसका सही अर्थ यही बैठता है कि शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है। इस प्रकार यहाँ भी सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए। जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं है, ऐसे ही भक्त को दूसरे धर्मों की परवाह नहीं है, उसकी दृष्टि में दूसरे धर्मों का महत्व नहीं है। कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। धर्म में जड़ता और शरणागति में चिन्मयता का संबंध है। यहाँ सब जगह धर्म का अर्थ कर्तव्य कर्म ही लेना है। कर्तव्य कर्म अपने वर्णाश्रम को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता होती है। माम एकम शरणम ब्रजे का तात्पर्य है बाहर से माने व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज न हो, किसी का आश्रय न हो, केवल भगवान का ही आश्रय हो। विनय पत्रिका के 103वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, यह विनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। दोहावली में भी लिखा है गोस्वामी जी ने, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सन्मुख होता है, शरणागति की तैयारी करता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् 4:11। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अनंत रस को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधक को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरण हो जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ मिलता है। भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। यह शरणागति गीता का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले।